हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अनाई का घर। अपनी माँ के साथ डिनर करने के बाद मनस्वी ने थोड़ी देर उनके साथ बात की। तब तक अनाई भी आ गया था, लेकिन उसने अभी तक डिनर नहीं किया था। फ्रेश होकर वो अकेला ही डिनर करने बैठ गया। मनस्वी बीच बीच में तिरछी नज़रों से अनाई की तरफ देख रही थी। अनाई भी ऐसा ही कर रहा था, लेकिन जैसे ही उनकी नज़रें मिलीं, वे दोनों ही इधर उधर देखने लगे। वे इस तरह बर्ताव कर रहे थे जैसे वे एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे थे और उनकी नज़रें अनजाने में मिल गई हों। लेकिन उन दोनों को अच्छी तरह पता था कि वे छिपकर एक दूसरे को ही देख रहे थे। मनस्वी की माँ उसके साथ बैठी हुई थी। उन्होंने ये नोटिस कर लिया और हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी बेटी से बोली, मनु, जाकर उसके पास बैठ जा, हालचाल पूछ ले। खाना भले ही साथ में मत खा, क्योंकि तू डिनर कर चुकी है, लेकिन अपने हाथों से सर्व कर देना, आखिर वो तेरा पति है। अपनी माँ की बात सुनकर मनस्वी खुश होकर अपनी जगह पर खड़ी हुई और बोली, हाँ, मैं बस अभी। लेकिन इतना बोलते ही उसे एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रही थी, इसलिए वो अपनी जगह पर ही रुक गई और अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, क्या मम्मी, आप भी ऐसे क्यों बोल रही हैं जैसे वो बहुत दिनों बाद घर आया हो? इतना टाइम है, हम दोनों आराम से बात कर लेंगे। अभी चलिए, आपकी दवा और रेस्ट करने का टाइम हो गया है। इतना बोलते हुए मनस्वी ने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा और पीछे मुड़कर एक बार डाइनिंग एरिया में अनाई को देखा, जिसका डिनर लगभग खत्म हो चुका था। अपने कंधे से मनस्वी का हाथ हटाते हुए उसकी माँ ने कहा, मैं खुद चल जाऊंगी, इस तरह से हाथ पकड़कर इधर उधर मत ले जाया करो, मुझे उम्र से ज्यादा बूढ़ा महसूस होता है। मैं ठीक हूँ अब, और मेरी तबीयत भी। उनके बात पर मनस्वी थोड़े निराश स्वर में बोली, क्या मम्मी, अच्छा ठीक है, चलिए मैं बस ऐसे ही साथ चलती हूँ। उसकी माँ उसे मना करती, इससे पहले ही मनस्वी उनके पीछे पीछे उनके कमरे की तरफ जाने लगी। वो कमरे के बाहर तक ही पहुंची थी कि तभी उसका मोबाइल फोन बज उठा। वो कॉल रिसीव करने से पहले अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखने लगी। स्क्रीन पर कॉलर आईडी देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। वो कॉल रिसीव करना चाहती थी, लेकिन शायद अपनी माँ के सामने वो फोन पर बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो थोड़ी सोच में पड़ गई। तभी उसकी माँ ने कहा, ऐसे ही स्क्रीन पर घूर कर देखने से क्या कॉल रिसीव हो जाता है? उनकी आवाज़ कान में पड़ते ही मनस्वी ने मोबाइल स्क्रीन से नज़र उठाकर उनकी तरफ देखते हुए पूछा, हाँ, क्या हुआ, कुछ कहा क्या मम्मी आपने? मनस्वी की माँ ने कहा, ध्यान कहाँ है तेरा, उस फ़ोन कॉल में ही तो, फिर सिप क्यों नहीं कर रही? और मैं अब चलूंगी, देखो ये कमरे का दरवाज़ा सामने ही है। उनकी बात सुनकर मनस्वी ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और कॉल रिसीव करते हुए वहाँ से सीढ़ियों की तरफ आ गई। वो कॉल पर बात करते हुए लिविंग रूम की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। तभी उसने देखा कि अनई भी अपना डिनर खत्म करके लिविंग एरिया के सोफे पर बैठा हुआ है। उसने मनस्वी को ऊपर जाते हुए नोटिस किया, लेकिन मनस्वी कॉल पर बात करते हुए अनई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी और न ही वहां रुकी, वो सीधा ऊपर चली गई। वो जिस तरह धीमी आवाज में बात कर रही थी, इससे अनई को उस पर शक हुआ। तुरंत ही वो भी उठकर उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ गया, लेकिन तब तक मनस्वी ऊपर आकर कमरे के अंदर जा चुकी थी। किससे बात कर रही है ये रात के इस वक्त? अनय अपने आप से सवाल करता हुआ कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा पूरा बंद था। अनय को लगा कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक होगा। ये सोचकर उसने दरवाज़े पर तेज़ी से हाथ मारा, लेकिन दरवाज़ा लॉक नहीं था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उसने सिर्फ विराज का नाम लेकर मनस्वी को किसी से बात करते सुना। अनय को इस तरह अचानक वहां आते देख मनस्वी पहले तो चुप हो गई, लेकिन फिर कॉल पर बोली, जो भी हो मुझे इन्फॉर्म कर देना और उस पर पूरी नज़र रखो, बाकी मैं बाद में बताती हूँ आगे क्या करना है। हाँ हाँ ठीक है, इतना बोलकर मनस्वी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसके इस तरह कॉल डिस्कनेक्ट करने से अनय समझ गया कि मनस्वी ने उसे सामने देखकर ही कॉल डिस्कनेक्ट की है, लेकिन अनय इस बात को अब ऐसे नहीं छोड़ने वाला था, इसलिए वो आगे बढ़कर आया और उसने मनस्वी का एक हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे अपने करीब करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या चल रहा है ये सब, आखिर करना क्या चाहती हो तुम, साफ साफ बता दो ना। क्या सब, तुम किस बारे में बात कर रहे हो अनय, और इस तरह से मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है तुमने, छोड़ो मुझे। मनस्वी ने एकदम अनजान बनते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। देखो मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा हाथ पकड़ने का या तुम्हारे नज़दीक आने का, लेकिन तुम मुझे मजबूर करती हो ऐसा करने पर, क्योंकि मुझे पता है सीधी तरह से तो तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगी, अनई ने उसकी आंखों में देखते हुए एकदम मजबूती से कहा। उसकी ये बात सुनकर पता नहीं क्यों मनस्वी को बहुत बुरा लगा और वो उससे नजरें नहीं मिला पाई। थोड़ी इमोशनल होते हुए बोली, क्या जानना चाहते हो? और वैसे भी मैं तुम्हें जो बताऊंगी तुम कौन सा उस पर विश्वास कर लोगे? अनई ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, वो मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। इसलिए तुम बस ये बताओ कि तुम और विराज साथ मिलकर क्या प्लान कर रहे हो आदित्य के खिलाफ। और सुनैना, मुझे पता है विराज उसे पसंद करता है, लेकिन मनस्वी वो दोनों शादीशुदा हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए प्लीज विराज का इन सब चीज़ों में साथ मत दो, ये गलत है, बहुत गलत। मनस्वी खुद को स्ट्रांग दिखाने की पूरी कोशिश करते हुए बोली, सही गलत और अच्छे बुरे की पहचान मुझे भी बहुत अच्छी तरह से है, लेकिन तुम बस हमेशा मुझे ही गलत समझते हो। और अभी भी तुम्हें यही लग रहा होगा ना कि मैं विराज का साथ दे रही हूँ ताकि वो सुनैना को अपने साथ लेकर आए। लेकिन सॉरी, और कान की इन्फॉर्मेशन में तुम्हें बता दूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, और मैंने विराज को इन सब के लिए साफ मना कर दिया है। फॉर गॉड्स सेक, कम से कम झूठ तो मत बोलो। मैंने खुद अभी अपने कानों से सुना तुम विराज का नाम लेकर फोन कॉल पर बात कर रही थी। और अगर तुम ऐसा कुछ भी गलत नहीं कर रही हो तो फिर मुझे देखकर तुमने कॉल डिस्कनेक्ट क्यों कर दी? आखिर ऐसी क्या बात कर रही थी और किससे? अनई ने अपने मन में चल रहे सवाल उससे पूछे, मैं कोई भी बात करूं और किसी से भी करूं, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी मैंने कहा था कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। देखो तो, मेरे बोलने के बाद भी मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुम्हें सफाई ही क्यों दे रही हूँ? मनस्वी की ये बातें सुनकर अनई की पकड़ काफी ढीली हो गई। वो ध्यान नहीं दे पाया और इतना बोलकर मनस्वी झटके से अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से आगे जाने लगी। लेकिन तभी अनई के दिमाग में पता नहीं क्या आया और उसने जल्दी से आगे आकर दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार उसने उसे अपनी तरफ नहीं खींचा, बल्कि उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए उसे दीवार से लगा दिया। उसकी तरफ से ऐसी किसी हरकत की मनस्वी को उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसके ऐसा करने से वो एकदम हैरान रह गई। उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अनई, अनई, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। उसके इतना हिलने डुलने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अनई ने अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखकर उसे दीवार से लगाकर पकड़ा हुआ था और उसकी आंखों में ही देख रहा था। लेकिन उसके इस सवाल पर वो बोला, अच्छा, उस दिन होटल रूम में तो तुम खुद ही मेरे इतने नजदीक आई थी, और तब तो नहीं छोड़ा था तुमने मुझे? तब कुछ फर्क पड़ा था तुम्हें? मनस्वी उसकी बात पर बोली, व्हाट, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट? ऐसा कुछ भी नहीं किया था मैंने उस दिन।
हाँ, कुछ किया नहीं था। मैंने कब कहा कि कुछ किया था? मैंने तो बस इतना कहा कि नजदीक आई थी, और पता है कितने नजदीक? इतना। ये बोलते हुए अनय हल्का सा झुककर अपने होंठ उसके चेहरे के एकदम सामने ले आया। उसके ऐसा करने पर मनस्वी को अपनी सांसें एकदम रुकती हुई सी महसूस हुईं, क्योंकि उस रात होटल रूम का वो सीन उसकी आंखों के सामने फ्लैश होने लगा जब वो खुद ही उसके इतने नज़दीक जाकर उसका परफ्यूम सूंघने की कोशिश कर रही थी, और उसे सब कुछ याद आ गया। लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। तभी अनय ने कहा, और पता है तुमने उसके बाद क्या कहा था? नहीं, मुझे नहीं जानना और कुछ भी। वैसे भी उस रात मैं होश में नहीं थी, मैंने थोड़ी सी ड्रिंक की हुई थी और शायद इसीलिए वो सब। बट सॉरी, मनस्वी बात को ख़त्म करने वाले अंदाज में माफ़ी मांगती हुई बोली। लेकिन तभी अनय ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, तुम्हें भी फ़र्क पड़ता है ना मेरी नज़दीकी से, मेरे इतने करीब होने से, मेरी बातों से, मेरा तुम पर विश्वास करने या ना करने से। ठीक उसी तरह मुझे भी फ़र्क पड़ता है कि तुम क्या कर रही हो अपनी लाइफ में, किसके साथ क्या बात कर रही हो, गलत या सही। मैं बस तुम्हें गलत करने से रोकना चाहता हूँ और कुछ नहीं। क्रमशः